लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि जिन समाजों में सह अस्तित्व अधिक कठिन प्रतीत होता है, वे जातीय, राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक कारणों से टकराव के प्रलोभन में न फंसें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि आज दुनिया एक नैतिक संकट का सामना कर रही है, जिसमें बढ़ती तानाशाही, गहरी होती असमानता और मानव पीड़ा के प्रति खतरनाक अनदेखी शामिल है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की वैश्विक असेंबली में कहा कि मानवाधिकारों की लड़ाई अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। महासचिव ने एक अशांत दुनिया की असल तस्वीर पेश की, जिसमें अनेक गंभीर संकट चल रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख गाजा में जारी युद्ध है। उन्होंने वैश्विक विश्वास, सम्मान और न्याय को बहाल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
यूएन प्रमुख ने देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और मानवाधिकारों की लगातार व सार्वभौमिक रूप से रक्षा करने की पुकार भी लगाई है, अब भले ही ऐसा किया जाना असुविधाजनक ही क्यों न हो। उन्होंने साथ ही वैश्विक विश्वास, सम्मान और न्याय को बहाल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने एक अशांत दुनिया की असल तस्वीर पेश की, जिसमें अनेक गंभीर संकट चल रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख गाजा में जारी युद्ध है। उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन साथ ही कहा कि इसके बाद जो तबाही मचाई गई वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा,
The scale and scope is beyond anything we have seen in recent times.
मौत और विनाश का स्तर और व्यापकता हाल के समय में देखी गई किसी भी घटना से कहीं अधिक है। मैं ये नहीं समझा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई हिस्सों में इतनी अनदेखी और निष्क्रियता क्यों देखी जा रही है। करुणा की कमी, सच्चाई की कमी और इंसानियत की कमी।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता की मांग भी की। उन्होंने साथ ही आगाह किया कि दुनिया भर में राजनीतिक विरोध दबाए जा रहे हैं, पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है और महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं।
फिलिस्तीनियों के लिए यूएन राहत एजेंसी के महाआयुक्त ने गाजा में फिलिस्तीनियों के भीषण हालात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गाजा के लोग न तो जीवित हैं और न ही मृत, वे चलते फिरते शव हैं। उन्होंने गाजा पट्टी में बच्चों और वयस्कों में बढ़ते गंभीर कुपोषण के बीच एक ट्वीट संदेश में कहा, जब बच्चों में कुपोषण बढ़ता है तो सहन शक्ति कमजोर हो जाती है, भोजन और देखभाल तक पहुंच समाप्त हो जाती है और भूखमरी धीरे धीरे अपनी जकड़ बढ़ाने लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि गाजा में 27 मई से 21 जुलाई के बीच भोजन पाने की कोशिश करते हुए 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को भयावह हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूएन एजेंसियों का कहना है कि गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य अभियानों के कारण लगातार मौतें, विस्थापन और विनाश जारी है। मानवीय राहत मामलों की समन्वय एजेंसी ओचा ने गाजा पट्टी में भयावह और तेजी से बिगड़ते हालात पर फिर से गहरी चिंता व्यक्त की है। एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि पूरे गाजा पट्टी में भूखमरी का संकट गहराता जा रहा है। उधर WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने गाजा में लगातार बमबारी के हालात में कहा है कि केवल बम ही नहीं भूखमरी भी फिलिस्तीनियों की जान ले रही है। नवीन जानकारी के अनुसार कम से कम 100 लोगों की मौत भूख से हो चुकी है। WHO ने 5 साल से कम उम्र के करीब 21 बच्चों की कुपोषण से मौत दर्ज की है। भोजन की कमी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी प्रभावित कर रही है, जिससे उनके बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के साथ पैदा होने का खतरा बढ़ रहा है। WHO प्रमुख ने यह भी कहा है कि खाद्य वितरण स्थल अब हिंसा के केंद्र बन गए हैं। अस्पताल, जो कि सुरक्षित ठिकाने होने चाहिए थे, लगातार हमलों का निशाना बन रहे हैं और कई अस्पताल तो पूरी तरह बंद हो गए हैं।
पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान में जबरन वापस भेजे गए लोगों के साथ अत्याचार किए जाने की दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में स्वदेश वापस लौटे अफगान लोगों को देश में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना करना पड़ा है। इसमें यातना, मनमानी गिरफ्तारी और जान से मारने की धमकियां शामिल हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
इस रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों की दर्दनाक आपबीतियां शामिल की गई हैं। ऐसी ही एक आपबीती एक पूर्व टीवी रिपोर्टर की है, जिन्हें अगस्त 2021 में तालिबान की धमकियों के कारण देश छोड़ना पड़ा था, लेकिन जब 2024 में उन्हें पाकिस्तान से जबरन वापस भेजा गया तो उन्हें आजादी नहीं बल्कि एक अदृश्य कैद मिली। UN रिपोर्ट के अनुसार इस टीवी रिपोर्टर ने बताया कि उनके लिए वहां अब रोजगार नहीं है, आवाज उठाने की आजादी नहीं है और वो स्पष्ट रूप से कह सकती हैं कि वो दरअसल घर में नजरबंद हैं। इस रिपोर्ट में उन जैसे 49 लोगों की गवाहियां शामिल हैं। रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जबरन लौटाए गए लोग, विशेष रूप से महिलाएं, पूर्व सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी, पत्रकार एवं नागरिक समाज के कार्यकर्ता तालिबान शासन के प्रतिशोध, दमन व मानवाधिकार हनन के लगातार शिकार बन रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भले ही तालिबान ने कई पूर्व सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए सार्वजनिक रूप से आम माफी की घोषणा की हो, लेकिन हकीकत यही है कि लौटने के बाद उन्हें लगातार छिपकर जीवन जीना पड़ रहा है।
बचपन को मानव जीवन का आधार माना गया है और इस बुनियाद पर ही किसी बच्चे की पूरी जिंदगी का रूप व आकार निर्धारित होता है। यूनिसेफ बिहार के ग्रामीण इलाकों में बच्चों के समग्र विकास के लिए खेलकूद का सहारा ले रहा है। यह एक तरह का शांत बदलाव है जिसमें यूनिसेफ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह सिखा रहा है कि वे खेल के जरिए किस तरह बच्चों की देखभाल और सीखने में परिवारों की मदद करें। यूनिसेफ स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी संसाधन और प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है ताकि वे परिवारों को यह समझा सकें कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इस पहल के बारे में जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
इस पहल के जरिए बिहार के पूर्णिया जिले के 22 प्रखंड के डंगराहटा घाट गांव में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। ये कोई बड़ा कार्यक्रम या नीति परिवर्तन नहीं है बल्कि घरों में गूंजती हंसी के साथ उठी बदलाव की लहर है। दरअसल यहां समुदायों में माना जाता था कि खिलौनों का मतलब बाजार से लाया गया प्लास्टिक होता है। उन्हें मालूम ही नहीं था कि पानी, चम्मच और कपड़ा जैसे घर के सामान भी बच्चों के लिए खिलौने बन सकते हैं। लेकिन सितंबर 2024 से सब कुछ बदलने लगा जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाजेदा तबस्सुम और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पिंकी कुमारी ने यूनिसेफ समर्थित प्रारंभिक बाल विकास यानी ECD प्रशिक्षण में भाग लिया। इस प्रशिक्षण में उन्हें ये सीखने में मदद मिली कि बच्चों की उम्र के प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क विकास कितना महत्वपूर्ण है। पिंकी कहती हैं, अब हमें गर्व होता है क्योंकि हम ऐसे बच्चे बड़े करने में मदद कर रहे हैं जो केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि खुशहाल और स्मार्ट भी हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आओ चले हम प्रभु उसने दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया। उसने दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शांति स्थापना के लिए समर्पित जयंती समारोह के लिए 40,000 इतालवी युवा संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित हुए। इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने बृहस्पतिवार शाम को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित 40,000 युवाओं को संबोधित कर कहा, इस शाम को पूरी कलीसिया द्वारा आलिंगन किए गए महसूस करें, जो आपके जीवन की ताजगी एवं सहजता को आनंद, सहानुभूति एवं विश्वास के साथ देखती है। 31 जुलाई की शाम संगीत, धर्मग्रंथ पाठों एवं विश्वास की गवाही से भरपूर थी और संघर्ष क्षेत्रों में पीड़ित लोगों के साथ आध्यात्मिक निकटता व्यक्त की गई। यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पित्साबाला के एक वीडियो संदेश और संतमती के सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए कार्डिनल जुप्पी ने कहा, मानवता को युद्ध का अंत करना होगा, अन्यथा युद्ध मानवता का अंत कर देगा। कार्डिनल जुप्पी ने उन लोगों द्वारा निर्मित भयंकर क्रूसों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो हत्या के लिए हथियार बनाते हैं, अस्पतालों सहित जीवन देने वाली हर चीज को नष्ट करते हैं। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, कलीसिया क्रूस के नीचे खड़ी है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और उसका हृदय भारी पीड़ा से आहत है। उन्होंने पोप लियो के शब्दों में शांति के लिए जोरदार अपील करते हुए कहा, आइए हम अपने हृदयों को निरस्त करें ताकि हम इस हिंसक दुनिया के हृदयों और हाथों को निरस्त कर सकेंगे, इसके घावों को भर सकेंगे और नए संघर्षों को रोक सकेंगे। सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्राचीन रोमन अखाड़ा चिरको मासिमो में पौत्र वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के इच्छुक युवाओं के लिए खुले आकाश में पाप स्वीकार संस्कार का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर यूकैट फाउंडेशन इस विषय पर एक दस्तावेज की 10,000 प्रतियां वितरित करेगा। अपनी जयंती के लिए रोम पहुंचे लाखों युवा तीर्थयात्रियों के लिए शुक्रवार 1 अगस्त पूरी तरह से मेल मिलाप संस्कार को समर्पित दिन है, जिसके बाद वे शनिवार और रविवार को तोर विरगाता में पोप लियो 14वें के साथ एकत्रित होंगे। सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक 200 पाप स्वीकार केंद्र उपलब्ध होंगे, जहां पुरोहित पाप स्वीकार सुनने के लिए तैयार रहेंगे। इतालवी, स्पैनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली और पोलिश भाषा बोलने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पूरे दिन अपनी भाषाओं में पाप स्वीकार पेटी का उपलब्ध रहेंगे। वहीं जर्मन, हंगेरियन, स्लोवाक, कोरियाई और चीनी भाषाओं के लिए पेटी का निर्धारित समय पर उपलब्ध होंगे। प्रायश्चित के दिन यूकैट फाउंडेशन के 20 स्वयंसेवक यूकैट की पाप स्वीकार पर आधारित पुस्तक की 10,000 प्रतियां वितरित करेंगे। युवा जयंती के अवसर पर प्रकाशित यह विशेष संस्करण 4 भाषाओं में उपलब्ध होगा, इतालवी, अंग्रेजी, फ्रेंच एवं जर्मन। 2014 में पहली बार प्रकाशित और इस अवसर के लिए अद्यतन की गई इस पुस्तक का उद्देश्य युवाओं को मेल मिलाप संस्कार का एक सुलभ परिचय प्रदान करना है। नए संस्करण में अंतःकरण की जांच, पाप स्वीकार के अर्थ की व्याख्या एवं कुछ उपयोगी प्रार्थनाएं शामिल हैं। हेलसिंकी के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर की 50वें वर्षगांठ पर संत पापा लियो 14वें ने जोर देते हुए कहा है कि हेलसिंकी की भावना की रक्षा की जाए, बातचीत जारी रखी जाए, सहयोग को मजबूत किया जाए तथा संघर्षों को रोकने और सुलझाने के लिए कूटनीति को पसंदीदा रास्ता बनाया जाए। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की इच्छा से प्रेरित होकर 35 देशों ने एक नए भू राजनीतिक युग की शुरुआत की थी, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच घनिष्ठ संबंध बढ़े। संत पापा लियो 14वें ने 1 अगस्त को अपने एक संदेश के माध्यम से लिखा, आज हेलसिंकी अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर के 50 वर्ष बाद हेलसिंकी की भावना की रक्षा करना, समाज जारी रखना, सहयोग को मजबूत करना तथा संघर्षों को रोकने और सुलझाने के लिए कूटनीति को पसंदीदा मार्ग बनाना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। हेलसिंकी समझौता, जिसे हेलसिंकी अंतिम अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, पर 1 अगस्त 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह घोषणा पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ द्वारा यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन के समापन पर पूर्व पश्चिम संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता था। परमधम पीठ एवं इटली ने रोम के ठीक बाहर वैटिकन के संत मरिया दी गैलेरिया क्षेत्र में एक कृषि वोल्टेक संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है वैटिकन सिटी को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति प्रदान करना, पारिस्थितिक उत्तरदायित्व और सतत विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए और उस पर अमल करते हुए परमधम पीठ और इटली ने गुरुवार को संत मरिया दी गैलेरिया में एक कृषि वोल्टेक संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह रोम के निकट परमधम पीठ का एक क्षेत्र है। इस समझौते पर 31 जुलाई 2025 को परमधम पीठ स्थित इतालवी दूतावास में हस्ताक्षर किए गए। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदश पॉल रिचर्ड गलागर ने परमधम पीठ की ओर से हस्ताक्षर किए, जबकि राजदूत फ्रांचेस्को दिनितो ने इतालवी गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया। 5 अनुच्छेदों वाला यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा आंतरिक प्रतिक्रिया के पूरा होने की पुष्टि करने वाली राजनयिक सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद लागू होगा। इस पहल की सराहना परमधम पीठ और इटली के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की एक ठोस अभिव्यक्ति के रूप में की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार वकील ने वैटिकन न्यूज से गजा में अकाल की आपात स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, राष्ट्रों को 3,20,000 बच्चों सहित आबादी को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि गजा के एक तिहाई से ज्यादा निवासी कई दिनों से बिना भोजन के रह रहे हैं और 5,00,000 से ज्यादा लोग अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। बाकी सभी लोग आपातकालीन स्तर की भूख का सामना कर रहे हैं। आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करने वाले शिशुओं और बच्चों को पोषण एवं दवाइयां प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अकाल की स्थिति फैलने पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।